श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज राधाष्टमी महोत्सव है और श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनका प्राकट्य दिवस आविर्भाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों को फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में या श्रील प्रभुपाद के लेक्चर में बहुत ज़्यादा श्रीमती राधा रानी या उनकी अंतरंग लीलाएं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। ज़्यादातर जो विषयों की चर्चा की गई है वो आधारभूत संबंध ज्ञान के बारे में बताया गया, क्योंकि क्या है, अगर हम संबंध ज्ञान को जाने बिना जो राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का चर्चा करेंगे तो हम भक्ति को या भक्ति की भावनाओं को बहुत ही सस्ता समझेंगे और ऐसा अधिकतर लोगों के साथ में होता है। वो सीधे ही जो भगवान की और भगवान की जो गोपियां हैं उनकी लीलाओं को सुनने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और भगवद गीताओं की शिक्षाओं को जब सुनते हैं तो ठीक है, लेकिन इतना रुचिकर नहीं लगता है। जैसे मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर पढ़ रहा था राधाष्टमी के ऊपर, तो वो लेक्चर में प्रभुपाद समझा रहे हैं भगवान के अलग अलग गुण क्या होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे परम शक्तिशाली हैं, सभी सृष्टि का सभी चीज़ों का सृष्टि करते हैं, पूरा कृष्ण का गुणगान सब कुछ वो कर रहे हैं। तो ऐसा डाउट हुआ कि ये राधाष्टमी का लेक्चर है कि जन्माष्टमी का लेक्चर है, कि पूरा भगवान कृष्ण के बारे में ही चल रहा है और अंतिम में जाके प्रभुपाद वहाँ बोल रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जो परम शक्तिशाली हैं, सर्वव्यापी हैं, सभी वस्तुओं का सृष्टि करते हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी की भक्ति के अधीनस्थ हो जाते हैं। बस इतना प्रभुपाद ने अंतिम में बोला और पूरे लेक्चर में प्रभुपाद कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमें भी श्री प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करते हुए अधिक से अधिक जो तत्व ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, उसको सुनना चाहिए। उसकी उस संबंध ज्ञान को सुनने के पश्चात हम समझ सकते हैं कि जो राधा और कृष्ण है उनमें जो प्रेम है वो किस स्तर का है, और जो भौतिक जगत में जो कथाकथित जो प्रेम की बात की जाती है वो किस स्तर का है। जैसे भौतिक जगत में जो प्रेम है या जिसको काम भी बोला गया है उसकी तुलना की गई है एक लोहे से, है ना, लोहे के समान है, और जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है भगवान और भगवान के भक्तों के मध्य में और भगवान के मध्य में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियां हैं, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं, उनके बीच में जो प्रेम है उसकी तुलना की गई है सोने से। तो जो नौसिखिया है उसको प्रेम और काम एक जैसे लगेंगे, राधा कृष्ण के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वही जब भौतिक जगत में उसका विकृत प्रतिबिंब देखेंगे तो एक लड़के या लड़की के बीच में जो प्रेम है वो राधा कृष्ण के प्रेम जैसा है या उससे थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल धारणा है। और ये भूल धारणा क्यों आती है, क्योंकि हम जो कृष्ण तत्व है, ये संबंध ज्ञान है, उसको नहीं समझते हैं। तो जिस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम गए द्वापर के अंत में, तो जो शुद्ध गोस्वामी हैं उनसे सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में चले गए तो उसके बाद जो धर्म है, धर्म का कैसे पालन किया जाएगा, धर्म की जो रक्षा है वो कौन करेगा, धर्म किस रूप में स्थित होगा। तो शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके उसका पालन करके हम भगवान श्री कृष्ण का संबंध प्राप्त कर सकते हैं और संबंध के द्वारा पुनः भगवत धाम जा सकते हैं। फिर उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण का युगल रूप, श्री कृष्ण है लेकिन जो उनका भाव है, इमोशंस हैं और जो उनकी अंग कांति है ना, बॉडीली लस्टर, वो कैसी है? श्रीमती राधा रानी की तरह है। तो वो श्रीमती राधा रानी के भाव में है, स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें से प्रमुख शिष्य हुए षड गोस्वामी, छह गोस्वामी, वृंदावन के छह गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, दास रघुनाथ और जीव गोस्वामी। तो ये छह गोस्वामी हुए हैं और इन छह गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप शास्त्रों को लिखना प्रारंभ कीजिए, जो भी मैंने शिक्षा दी है उसको आप लिखित रूप में दीजिए। तो उन षड गोस्वामियों में से जो सबसे प्रमुख है वो है शील रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। और इस्कॉन में रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उनमें से दो ग्रंथों को शील प्रभुपाद ने उसके अनुवाद किया है और उसके ऊपर टीका किया है। तो एक है उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो जिस तरह से श्रीमद् भागवतम है जो श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, उसी तरह से जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी साहित्य रूप में है। और जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जिस तरह से श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत या अंतर्गत रहकर हम सेवा सीखते हैं ना, श्रीमती राधा रानी या उनके जो प्रतिनिधि हैं, गुरुजन हैं, भक्तजन हैं, उनके अंतर्गत रहकर हम भक्ति करना सीखते हैं। भक्ति सेवा कैसे की जा सकती है? स्वतंत्र रहकर, स्वतंत्र होकर हम भक्ति सेवा नहीं कर सकते है ना। तो जिस तरह से श्रीमती राधा रानी और उनके प्रतिनिधियों के अंतर्गत रहकर हम सेवा करते हैं, तो वो निर्देश क्या है, किस तरह से हमको भक्ति सेवा करना है, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, भक्ति के नाम पे कुछ और ही चल रहा है, तो वो सब उसका बहुत ही अच्छी तरह से जो विश्लेषण है, एक एक चीज़ जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद ने जिसका उसके जो कमेंट्री लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। तो जब विज्ञान शब्द आता है तो विज्ञान शब्द से मन में आता है कि कुछ ऑब्जर्व, कुछ हाइपोथेसिस होगी, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन होगा, फिर एक्सपेरिमेंट होगा और फिर थ्योरी बनाएगी, मतलब टेस्टेड होगा। साइंस मतलब टेस्टेड, कि यस ये जो थ्योरी है वो टेस्टेड है और इसका ये परिणाम आता है। उसी तरह जो भक्ति है वो भी क्या है, एक विज्ञान है और बहुत बड़ा विज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान है या जो मटेरियलिस्टिक साइंस है उससे बहुत उच्च विज्ञान है। तो भक्ति भी कोई अंधाधुंध चीज़ नहीं है कि हमारे मन में आ गया तो हमने इसकी भक्ति कर लिया, हमारा हृदय ऐसा बोलता है तो हमने उसकी भक्ति कर लिया, जब मेरा मन करेगा तब भक्ति करूँगा, ऐसा कोई अंधाधुंध नहीं चल रहा है भक्ति में। भक्ति भी क्या है, एक विज्ञान है, कोई साइंस की लैब है ना, उसमें हम चले गए, मेरा मन कर रहा है इसको इसमें मिलाऊँ, इससे ये करूँ, उससे वो करूँ, कुछ आ जाएगा, तो वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। नियम है, उसके अंतर्गत रहकर आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह जो भक्ति है वो भी ऐसे मनमाने तरीके से या अंधाधुंध नहीं चलती है, उसके लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक विज्ञान है जो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उस जो भक्ति में सेवा है उसको हम कितने हद तक समझे हैं और कितना हम पालन कर पा रहे हैं और कहाँ हमारी कमी है। क्योंकि जब हम भक्ति में सेवा है उसकी परिभाषा जानेंगे और भक्ति में सेवा होती क्या है, तब तो हम जान पाएंगे हमको करना क्या है। अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, अभक्त भी बैठे हैं, मायावादी भी बैठे हैं, बुद्धिस्ट भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और हम बोलेंगे भक्ति करते हैं आप लोग, तो सब हाथ उठाएंगे, हाँ भक्ति करते हैं। और फिर सबसे पूछेंगे भक्ति से क्या समझते हैं, तो कोई बोलेगा भक्ति मतलब निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कोई बोलेगा भक्ति मतलब समाज सेवा करना, मानवता की सेवा करना ही भक्ति है। फिर किसी से बोलेंगे आप भक्ति करते हैं, हाँ भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। फिर कोई बोलेंगे भक्ति वो तो अंततः शून्य हो जाना है, हम तो देवी देवता की भक्ति करते हैं। तो अभी हम भक्ति शब्द बोलेंगे तो सबकी अलग अलग धारणा होंगी और सब सोचेंगे हम भक्ति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो वास्तव में भक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो जानना पड़ेगा। भक्ति में और जो नॉन डिवोशनल सर्विस है, अब अभक्ति में सेवा है, उसमें जब अंतर समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमारे ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि नहीं। या दूसरा, राधा रानी की कृपा तो है लेकिन उस कृपा को हम ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कृपा तो हमेशा ही दे रहे हैं लेकिन कृपा को हमको ग्रहण करना है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, अभी हम कितने सिंसियर हैं उस कृपा को ग्रहण करने के लिए। और वो कृपा कैसे मिलेगी, वो रूप गोस्वामी जी ने जो ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसमें वो कृपा के रूप में निर्देश दिए हैं, जिससे हम अपने आप को फाइन ट्यून कर पाएं कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की क्या परिभाषा दी गई, और आशा की जाती है कि प्रवचन के अंत में कम से कम सब भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो भक्ति की परिभाषा है वो याद रखिएगा, फिर जाके इसमें से आप पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ विस्तार से दिया गया। तो जो शुद्ध भक्ति में सेवा है उसको रूप गोस्वामी बताते हैं, जो पहला खंड है उसकी पहली लहरी है उसका 11वां श्लोक है, उसमें बताते हैं, आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमः। तो ये जैसे विज्ञान में एक थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से हम सब कुछ संसार में जो भी एक्टिविटीज चल रही है, जो भी हमको घटनाएं दिख रही हैं, उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से हम सब कुछ जान सकते हैं। तो भक्ति के क्षेत्र में ये है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस एक परिभाषा में क्या भक्ति होती है और क्या भक्ति नहीं होती है, दोनों के बारे में चर्चा की गई है। तो क्या भक्ति होती है उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण, और क्या भक्ति नहीं होती है उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण, है ना, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में हम जान सकते हैं कि भक्ति क्या है, और तटस्थ लक्षण में हमको क्या नहीं करना, दोनों चीज़ें, विधि और निषेध। तो हम एक एक शब्द की इसमें चर्चा करेंगे। शब्द सबसे पहला जो शब्द है इसमें लिखा है भक्तिर उत्तमा। ये जो रूप गोस्वामी हैं वो परिभाषा दे रहे हैं किसकी, उत्तम भक्ति की। उत्तम भक्ति क्या होती है, एक्चुअली भक्ति निम्न नहीं होती या भक्ति अधम नहीं होती, भक्ति हमेशा उत्तम ही होती है। लेकिन भक्ति में अलग अलग तरह के कलमश आ जाते हैं, अलग अलग तरह के मिश्रण आ जाते हैं, या हमें भक्ति लगता है लेकिन भक्ति का प्रतिबिंब होता है या भक्ति की छाया होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सोच रहे हैं कि भक्ति तो बहुत आसान थी, यहाँ तो मिश्रण ही बता रहे हैं, छाया भी बता रहे हैं, प्रतिबिंब बता रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स हमारा माइंड है, भक्ति तो बहुत सरल है। प्रभुपाद बोलते हैं सिंपल फॉर द सिंपल, जो भक्ति सरल लोगों के लिए बहुत सरल है और जो थोड़े टेढ़े हैं उनके लिए भक्ति टेढ़ी है। तो भक्ति में अलग अलग तरह के मिश्रण होते हैं, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, इसमें हम आगे देखेंगे। तो भक्तिर उत्तमा, ये किसकी बात हो रही है, उत्तम भक्ति की बात हो रही है, और उत्तम भक्ति का पालन करके कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे, वो 6 लक्षण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये उत्तम भक्ति है, ये ना तो कर्म मिश्र भक्ति है, ना ज्ञान मिश्र भक्ति है, ना योग मिश्र भक्ति है, ना ये छाया भक्ति है, ना प्रतिबिंब भक्ति है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अलग अलग ये टर्म्स क्या होते हैं। फिर अभी सबसे पहले शब्द आता है, ये बोल्ड देख रहे हैं आप, कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये कृष्णानुशीलनम का अर्थ क्या होता है। तो कृष्णानुशीलनम में तीन शब्द हैं, क्या क्या है, कृष्ण, अनु और शीलनम। तो कृष्ण का अर्थ है, अनु का अर्थ है और शीलनम का अर्थ है। हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, जिससे रूप गोस्वामी, ऐसे कोई फॉर्मूला होता है ना E=mc², वो है दिखने में छोटा है लेकिन वो बना कैसे है वो वैज्ञानिक ही जान सकते हैं, है ना, या जो उस फील्ड का स्टूडेंट है। उसी तरह रूप गोस्वामी जी ने उसको जो पूरी भक्ति की जो परिभाषा है उसको क्या कर दिया है, एकदम पैक्ड कर दिया है, और श्रील प्रभुपाद ने उसको खोल दिया है कि कैसे अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ है। सबसे पहले कृष्णानुशीलनम, कृष्ण, अनु और शीलनम, तो ये तीन शब्द हैं, कृष्ण, अनु, शीलनम। तो जो उत्तम भक्ति होती है वो किसके लिए होती है, कृष्ण के लिए होती है। देवी देवताओं के लिए उत्तम भक्ति नहीं होती है, एक्चुअली देवी देवताओं के लिए भक्ति नहीं होती, उनके लिए उपासना होती है या पूजा होती है। उनके लिए जो भक्ति शब्द है वो विशेष रूप से जो विष्णु, विष्णु या विष्णु तत्व हैं, जो मूल विष्णु तत्व हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनके लिए इस उत्तमा भक्ति का, उत्तमा भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कृष्ण जैसे हम बोलते हैं कि राजा है, राजा आ रहा है, तो राजा अकेले थोड़ी आएगा, राजा आ रहा है अकेले आ रहा है, तो राजा किस चीज़ का, तो राजा आ रहा है मतलब उसके साथ सैनिक भी आ रहे हैं, हाथी भी आ रहे हैं, घोड़े भी आ रहे हैं, रथ भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं ना, तब तो वो राजा कहलाएगा, तब तो उसका राज्य कहलाएगा। तो उसी तरह जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण उनके पार्षद हैं, उनके परिकर हैं, उनसे संबंधित चीज़ें हैं, उनसे संबंधित स्थान है, सब कुछ भक्ति में सेवा में आते हैं। तो कृष्ण है, उनसे संबंधित कौन है, उनके भक्त हैं और गुरु हैं, और उनसे संबंधित स्थान है जैसे वृंदावन है, कुरुक्षेत्र है, मायापुर है, उनसे संबंधित वस्तुएं हैं। तो हर जो कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तु है उसकी हमको सेवा करना है, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित। तो इसमें क्लियर कट हो गया, ना तो निराकार ब्रह्म है, ना देवी देवता है, ना शून्य है, वो भक्ति नहीं कहलाएगी, है ना, वो एक मानसिक विकार है बस, और कुछ नहीं है, वो अविधि पूर्वकम है। तो कृष्ण और कृष्ण से संबंधित, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित उनके भक्त हैं, डिवोटीज हैं, तो डिवोटीज की सेवा करना वो भी उत्तम भक्ति का एक अंग है। फिर गुरुजन, उनकी सेवा करना वो भी उत्तम भक्ति का एक अंग है। और कृष्ण के अन्य अवतार है ना, विष्णु है, राम है, नरसिंह है, कूर्म है, उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, उसको पालन करना, वो भी उत्तम भक्ति के अंतर्गत है। तो कृष्ण शब्द से ये तीन चीज़ें आती हैं, कृष्ण, कृष्ण से संबंधित, कृष्ण से संबंधित और कृष्ण के अन्य अवतार, इनकी हम भक्ति में सेवा करें। जैसे वृंदावन है तो वृंदावन धाम क्या है, तो पूजनीय है, हम जैसे भजन गाते हैं, जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, है ना, तो वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। फिर जो भक्त है वो है वैष्णव ठाकुर, दयाल सागर, है ना, ऐसे वैष्णवों के लिए गीत गाते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो ये सब उत्तम भक्ति के अंग हैं। अगर कोई केवल कृष्ण की सेवा कर रहा है, केवल कृष्ण की, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें मायावाद का मिश्रण आ जाएगा। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला कि कृष्ण की एक पेंटिंग बनाइए, तो उन्होंने पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग में केवल कृष्ण थे और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, उनकी गाय भी होती है, मोर भी होती है, मुरली भी होती है, नदी भी होती है, पेड़ भी होते हैं, सब साथ में होते हैं। तो केवल कृष्ण की सेवा नहीं होती, राधा कृष्ण दोनों की साथ में सेवा होगी। और राधा कृष्ण की सेवा मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा है, भक्तगण है, उनकी सेवा में। तो ये कृष्ण शब्द का अर्थ है जो रूप गोस्वामी अपनी परिभाषा में बता रहे हैं, तो ये स्पष्ट है। फिर हम अभी कृष्णानुशीलनम, अनु, अभी अनु शब्द का क्या अर्थ है? बहुत छोटा शब्द, बहुत छोटा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, बहुत बड़ा है। अगर वो परिभाषा में से अनु को हटा दिया तो पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सब कुछ करते हुए लेकिन वो जो कृष्णानुशीलनम है, अगर उसको अनु को पालन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा। हम देखते हैं अनु शब्द का क्या अर्थ है। जैसे हम बोलते हैं ना अनुसरण, तो जो कृष्ण, कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं या कृष्ण से संबंधित स्थान है, उनकी सेवा कैसे करनी है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करते हुए हमें कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं की सेवा करनी है। तो अनु शब्द का एक अर्थ है, गुरु शिष्य परंपरा के बिना अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। अगर गुरु शिष्य परंपरा में है लेकिन गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षाओं को पालन नहीं कर रहे हैं तो भी कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। वो कैसा हो गया, वो डेविएशन हो गया, है ना, वो परंपरा से हम निकल गए। वो अब लग रहा है परंपरा में है, लग रहा है ऊपर ऊपरी तरह से सेवा कर रहे हैं लेकिन कृष्ण तक वो सेवा नहीं पहुंचे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए। फिर है अनु का अर्थ है निरंतर, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि बस संडे को हम कृष्ण की सेवा करेंगे या कोई एकादशी आएगी तो कृष्ण की सेवा करेंगे, कोई संडे रिलीजन नहीं है ना। कृष्ण भक्ति क्या है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, भगवान की सेवा क्या है, हमेशा है। कोई मान लीजिए हमेशा सत्य बोलता है, सत्यवादी है, तो ऐसा नहीं बोलेगा मैं केवल संडे को सत्य बोलता हूँ बाकी दिन झूठ बोलता हूँ। अगर वो सत्यवादी है तो हमेशा सत्य बोलेगा, ऐसा नहीं संडे को या एकादशी को बोलेगा। उसी तरह जो भक्त है वो हमेशा भक्ति के नियमों को पालन करेगा, ऐसा नहीं कि कभी अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, कभी अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं कर रहे हैं। निरंतर कैसी भी स्थिति हो, कुछ समस्या चल रही है घर में, कुछ समस्या है या भक्ति करने की वजह से आसपास समस्या आ गई तो हमने डर के मारे भक्ति कम कर दिया या भक्ति छोड़ दिया, तो अनुशीलनम नहीं हुआ, वो अनु शब्द क्या हो गया, हट गया। सुख हो गया, कुछ अच्छी डिग्री मिल गई, अच्छा जॉब मिल गया, भक्ति साइड में हो गई, हम फूले नहीं समाए, वो बहुत अच्छा है ये भक्ति, ठीक है भक्ति कर लेंगे, तो वो क्या अनुशब्द हट गया। निरंतर आ है तो कि अप्रतिहता ये आत्मा सु प्रसिद्धति, हमेशा निरंतर कृष्ण और कृष्ण से संबंधित लोग वस्तुओं की सेवा करना, कैसे भी कंडीशन, बीमार हो, टेंशन में हो, सुख हो, दुख हो, कैसे भी कंडीशन हो, हमें भगवान की सेवा करना है ना। इसलिए ज़्यादातर मंदिरों में लोग क्यों जाते हैं, मानसिक शांति के लिए, या दुख आता है तो उसके लिए जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले जाएंगे, एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, एग्ज़ाम के बाद जाएंगे, रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो लोगों की क्या होती है, फ्रूटिव मेंटेलिटी होती है और वो पूरी हो जाती है उसके बाद छोड़ देते हैं। तो वो निरंतर नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है, अप्रतिहता नहीं है, वो हमेशा नहीं चल रही है। तो जो उत्तम भक्ति है वो निरंतर चले। फिर तीसरा आता है प्रमाणिक, गुरु के निर्देशन में। अभी गुरु शिष्य परंपरा तो है, उस गुरु शिष्य परंपरा से हम जुड़े हैं, लेकिन जो गुरु हैं, गुरु का प्रत्यक्ष रूप से या गुरु के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से संग नहीं कर रहे हैं। अभी हमने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें लिया और हमने देख लिया कि बस श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा और उससे सब कुछ सीख जाऊंगा। यह श्रील प्रभुपाद ही अंतिम गुरु है, श्रील प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं हुए, श्रील प्रभुपाद ही अंतिम दीक्षा गुरु है और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से हमें सब कुछ आ जाएगा, तो ये नहीं। वर्तमान में हमारे कोई गुरु होना चाहिए जो हमको समझा सके कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं तो पढ़ के तो कौन बताएगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि दो तरह के भागवत होते हैं, एक पुस्तक भागवत, एक व्यक्ति भागवत। पुस्तक भागवत का अर्थ है जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, और व्यक्ति भागवत का अर्थ है जो जो व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, उस श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत में कौन श्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद ने कहा कि जो व्यक्ति भागवत है वो श्रेष्ठ है। तो बोले क्यों? बोले क्यों, क्योंकि व्यक्ति भागवत आपके कान पकड़ सकता है, जो बुक भागवत है, पुस्तक भागवत है, वो ये नहीं बताएगी कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति भागवत क्यों है? क्योंकि वो पुस्तक भागवत को पालन कर रहा है। तो उसी तरह वर्तमान में हमारे कोई गुरु होना चाहिए जिससे हम शिक्षा ले सकें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है। और ऐसा नहीं बस गुरु हो गए, बस एक बार दीक्षा ले ली, बस काम खत्म हो गया, स्टैंप लग गया एक, बस गुरु अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, बस दीक्षा लेना था, बस हो गया। ऐसा नहीं, गुरु से निरंतर मिलना, उनसे पूछना, जो भी हम जीवन में कुछ डिसीजन लेने वाले हैं तो गुरु से पूछना। ऐसे नहीं बस गुरु तो क्या है, गुरु को थोड़ी पता है मेरे जीवन में क्या चल रहा है, गुरु के तो इतने सारे शिष्य हैं, उनको क्या पता है मेरे बारे में, तो मैं अपने आप चलूँगा, तो वो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में नहीं होगा। इसी गुरु या गुरु की जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेजर डिसीजन कम से कम पूछ के ही लेना। अभी छोटी छोटी बात, हर बात नहीं पूछेंगे, लेकिन जो जो गंभीर बातें हैं वो उनसे पूछ के ही हमें डिसीजन लेना। तो कृष्ण और अनु है ना, तो बहुत सारे इसमें जितनी भूल धारणा है वो सब चली गई, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे हैं, जो निरंतर भक्ति नहीं कर रहे हैं, या जिनके गुरु नहीं है, प्रमाणिक गुरु नहीं है, वो सब उत्तम भक्ति से, शुद्ध भक्ति से आउट हो गए, है ना, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो ये हुआ कृष्ण और फिर अनु, फिर है शीलनम। शीलनम मतलब क्या है? शीलनम मतलब कुछ एक्टिविटी करना, कुछ क्रिया करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस इज ए सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन को कैसे बोलेंगे हिंदी में? कल्टीवेशन मतलब उत्पन्न करना, खेती करते हैं ना, खेती, तो उसमें कल्टीवेट करते हैं बीज को, फसल को कल्टीवेट करते हैं। तो जब बीज को कल्टीवेट किया जाता है तो क्या क्या ध्यान रखा जाता है कि जो वहाँ की जो भूमि है वो सही है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं, पानी का लेवल क्या है, कुछ खरपतवार लग रहे हैं तो उसको निकालना है, किस मौसम में कौन सी फसल लगती है, ये सब ध्यान में रखते हुए ही वो जो बीज है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। उसी तरह जो गुरु हैं और जो श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा हमको भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, तो उसका कल्टीवेशन किया जाता है, क्रियाएँ की जाती है, एक्टिविटी की जाती है ना। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट सिंपली इनएक्शन फॉर पीपल हु लाइक टू बी इनएक्टिव और डिवोट देयर टाइम टू साइलेंट मेडिटेशन। तो भक्ति ऐसा नहीं बस निष्क्रिय हो जाना। कई लोग सोचते हैं भक्ति मतलब, जैसे संन्यास शब्द का मिसयूज किया जाता है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, मतलब संन्यास मतलब छोड़ दिया, मतलब संन्यास सुनते ही साथ लोग सोचते हैं कि अभी छोड़ दिया, तो आपने संन्यास ले लिया मतलब अभी आप निष्क्रिय हो गए, अभी आप कोई कार्य नहीं कर रहे। लेकिन भक्ति क्या है? इनएक्टिविटी नहीं है, या कोई साइलेंट मेडिटेशन नहीं है कि बस चुपचाप एक कमरे में एक कोई लाइट है, रेड रंग की लाइट है, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं और उससे ध्यान करते करते कुछ समय के बाद आँखों में भेगापन हो गया। ऐसे कई बार होता है, ध्यान करते हैं और आँखें चश्मा लग जाता है, तो ये इनएक्टिविटी नहीं है, ये साइलेंट मेडिटेशन नहीं है भक्ति कि निष्क्रिय होना। और भक्ति में तो क्या होता है, क्रियाएं और बढ़ जाती हैं, और सेवा करना है। मंदिर में कितनी सेवा है, प्रचार करना है, मंदिर मार्जन करना है, कुकिंग करना है, बहुत सारी सेवा है। तो भक्ति बस, हाँ हम गुरु शिष्य परंपरा में है, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में सेवा करने के ठीक है, आ जाते हैं, सुन लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन शीलनम मतलब उसको क्रिया में लाना, जो हमने सुना गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार उसको क्रियान्वित करना, वो जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं आर्मचेयर फिलोसोफर्स। आर्मचेयर फिलोसोफर क्या होते हैं, जैसे एक बार हम पुस्तक वितरण में गए जयपुर, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में एक फिलोसफी डिपार्टमेंट था, तो बहुत फिलोसफी पे डिस्कशन चल रहा था, 8-10 लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो एक स्टूडेंट था, उसके पूरे बड़े बड़े बाल थे और मुंह में गुटका था, और उससे पूछा आप कौन सी फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, बोले मैं शंकराचार्य का वेदांत डिस्कस कर रहा हूँ। बोले उसके बाद क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं बस PhD करना है, उसके बाद जॉब मिल जाएगी। तो फिलोसफी मतलब ऐसा नहीं बस सुन लिया या पढ़ लिया, हमें सब कुछ आ गया, सब कुछ पता है, उसको कैसे क्रियान्वित करना। अगर क्रियान्वित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉलेज क्या हो जाएगा, वो भाव बन के उड़ जाएगा, वो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा उसका। तो जो हमने ज्ञान लिया है उसका साक्षात्कार करने के लिए हमको जो प्रैक्टिकल सर्विसेज हैं उसमें संलग्न होना पड़ेगा, तो वो पूरा होगा। तो सीलनम शब्द का अर्थ क्या, तो एक तो मन इंद्रियां वचन से भगवान के लिए कुछ कार्य करना, एक शब्द एक अर्थ है सीलनम का। और दूसरा अर्थ क्या है, कल्टीवेशन। तो जब पौधे का कल्टीवेशन किया जाता है तो बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इसी तरह जब हम किसी का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखा जाता है, उसमें कोई अनर्थ तो नहीं है, उसको क्या समस्या चल रही है, कैसे उत्साह मिलेगा, तो बहुत उसका हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे किसान है पेड़ पौधों का ध्यान रखता है। तो इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा वचन के द्वारा भगवान की प्रैक्टिकल सर्विस करना, वो भक्ति है। एक और फिर सीलनम में दो शब्द आएंगे, एक होता है प्रवृत्ति एक होता है निवृत्ति। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो पूरे भक्ति के जो भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो सीलनम में दो शब्द हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति, विधि और निषेध। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल चीज़ है उसको सहर्ष स्वीकार करना, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल चीज़ है उसको त्यागने में हिचकिचाना। जैसे एक डॉक्टर है, एक मतलब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बताएगा कि आपको ये टैबलेट लेना है, इतने बजे लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, और ये निषेध है, आपको तला हुआ नहीं खाना है, ऐसे विधि निषेध बताएगा। कोई सोचेगा मैं अपने आप दवाई ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से लेता हूँ, तो वो काम नहीं बनेगा, है ना। तो सीलनम में क्या है, कौन सी क्रियाएँ करना है और कौन सी क्रियाएँ नहीं करना है, क्या विधि है क्या निषेध है, ये भी किसमें आएगा, सीलनम। क्लियर। फिर सीलनम मतलब शरीर मन और वचन के द्वारा क्रिया करना। तो तीन शब्द हो गए, कृष्ण अनु और सीलनम, कृष्णानु सीलनम। अभी आगे शब्द आएगा अनुकूल्येन, अन्याविलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो कृष्णानुशीलनम हुआ, अभी अनुकूल्येन। तो अनुकूल शब्द का क्या होता है, हमने फेवरेबल उसको मतलब क्या, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे। कृष्ण की निरंतर सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, गुरु के निर्देशन में कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुकूल ये फेवरेबली, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि सेवा इस तरह से करना जिससे भगवान और भगवान के भक्त प्रसन्न हो। सेवा इस तरह से नहीं करना कि भगवान और भगवान के भक्त अप्रसन्न हो जाए। अभी सेवा तो हमने सीख लिया, लेकिन सेवा ऐसे कर रहे हैं जिससे भक्तों में कलह मच रहा है, भक्ति परेशान है या गुरु परेशान है, तो वो क्या हुआ, उससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। हम बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, कृष्णानुशीलन सब कर रहे हैं, लेकिन अंततः भगवान और भगवान के भक्त हैं वो प्रसन्न नहीं। और प्रसन्न मतलब भौतिक स्तर पर प्रसन्न नहीं कि उनकी चापलूसी करके प्रसन्न कर लेंगे उनको, आध्यात्मिक स्तर वास्तव में अगर हम सिंसियरली सेवा कर रहे हैं तो जो गंभीर भक्त होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ ये सही रूप से सेवा कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसे फ्लैटरिंग करके किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना, गुरु को फ्लैटर करके प्रसन्न नहीं किया सकता। तो जब आध्यात्मिक स्तर पर हम फेवरेबली है ना इस तरह से सेवा करेंगे, भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे, तब वो आनुकूल्य ने कहलाए ना। जैसे इसका उदाहरण है कि ऊपरी तौर से लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन अंदर पूरा द्वेष भरा हुआ, जैसे कंस या रावण। तो जितने ब्रजवासी हैं, जितना तीव्र वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, उतना तेज तो कंस कर रहा है। उसको रात में नींद भी नहीं आ रही, वो सो भी नहीं पा रहा है, उसको कृष्ण 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 वही घूम रहे हैं, लेकिन अंदर चेतना क्या है, वो कृष्ण को मैं कैसे मारूंगा। कोई भी असुर हो, रावण ले लीजिए, हिरण्यकश्यपु, सब क्या है, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, नरसिंहदेव का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, उनको एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं और उनको मुझे मारना। तो उसी तरह जो भगवान या भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा या उनके द्वारा दी गई हम जो सेवा कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि वो सेवा के द्वारा भगवान या भक्त प्रसन्न है कि नहीं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करना। अभी सेवा भी कई तरह से हो सकती है, उसमें अलग अलग डिटेल्स हो सकती हैं, अलग अलग सूक्ष्मताएँ हो सकती हैं, लेकिन कैसे सेवा करना है वो अनुकूल निकलना है, फेवरेबली। फेवरेबली नहीं है, और बाकी जैसे कोई उदाहरण ले सकते हैं, कोई किसी डिवोटी ने बोला आप कोई सेवा कर रहे हैं, अलीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं या मंदिर मार्जन कर रहे हैं, और भक्त ने बोला कि आप ये मत कीजिए, आप ये दूसरा कर लीजिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी ये यहाँ बहुत अच्छा है और ये करूँगा और ये तो अच्छा है, आपको क्या पता नहीं हो वहाँ क्या चल रहा है, तो मैं ये भी तो प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रभुपाद जी की सेवा है। तो क्या होगा, वो भक्तों के निर्देश में रह के नहीं हुआ, फिर हमने उनको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो भक्त सेवा तो हो गई लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, है ना। ऐसे मान लीजिए ऐसे ग्रॉस उदाहरण है, किसी भक्त ने पूछा कि पानी लेके आओ, तो पानी की जगह वो टॉयलेट में से पानी निकाल के पानी लेके आना, तो सेवा तो हो गई, पानी तो लेके आ गया लेकिन वो गलत तरीके से की। तो इसी तरह हम भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमको अल्टीमेटली वो देखना। कृष्ण की सेवा ही करना सब कुछ नहीं है ना, सेवा के पीछे जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब वो वास्तव में सेवा कहलाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर सेवा करते रहेंगे, उससे होगा सुकृति मिलेगा, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए हम लेके भक्ति कर रहे हैं वो हम मिस कर जाएंगे। तो ये हो गया आनुकूल्य। तो भक्ति का अर्थ उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना है जो कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। तो इसमें उदाहरण है कंस, रावण, हिरण्यकश्यपु, वो निरंतर चिंतन कर रहे हैं, और उसका ऊपरी तौर से उदाहरण देख सकते हैं यशोदा माँ, तो भगवान को दंड दे रही है लेकिन वो क्या है, उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो जो असुर हैं, जो अभक्त हैं, वो कुछ भी करेंगे, सेवा भी करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अपना तरीका मतलब शरणागति है ही नहीं, और शरणागति नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो शरणागति उन्होंने जो नींव है उसको हटा दिया और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो भक्तों के गाइडेंस में रह के, भक्तों के अनुसार जब हम कृष्णानुशीलन करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ उसका, आनुकूलन कृष्णानुशीलन का, इसको बोलते हैं भक्ति के स्वरूप लक्षण। तो कोई पढ़ेंगे पीछे से, सबसे पीछे से जोर से। सुनाइए किसके, कोई जोर से पढ़ेंगे जिससे हमको क्लियर हो। नहीं पीछे से पढ़िए।
उनके अवतार या शक्ति गुरु परंपरा के अंतर्गत रहकर इंद्रियों के सेवा करना जिससे कृष्ण प्रसन्न हो।
तो ये है स्वरूप लक्षण, कृष्ण या उनके अवतार या भक्ति की गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहकर इंद्रियों से, मिस्टेक हो गया, इंद्रियों से सेवा करना जिससे कृष्ण और भक्त प्रसन्न हो। तो ये पूरी क्या कहलाएगा, भक्ति का स्वरूप लक्षण कहलाएंगे। अभी हम देख सकते हैं कि अभी हम इसको पूरा पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो यही सेम जो स्टेटमेंट है प्रभुपाद प्रस्तावना में लिख रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जो ग्रंथ है इसमें एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको प्रभुपाद जी ने उसी ग्रंथ में अलग अलग जगह से विस्तारित किया, उसको समझाया। तो ये ग्रंथ ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे कि हम सही भक्ति सेवा में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो ये हो गया अनुकूलेन कृष्णानुशीलन। अभी ये हो गया क्या करना है, क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है। अभी ऐसा लग रहा भक्ति तो बहुत कठिन है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो अभी आएगा अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ये दो शब्द हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये एक दूसरा शब्द है। ये भी बहुत भारी शब्द है, एक एक को पालन करना बहुत मुश्किल है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम का क्या अर्थ है, अन्य मतलब, हाँ अन्य मतलब दूसरी अभिलाषा, दूसरी मतलब अनुकूल ने कृष्णानुशीलन को छोड़कर जो भी इच्छाएं वो सब अन्य में आ जाएगी। अन्य अभिलाषिता इच्छाएं, अन्य जितनी इच्छाएं हैं वो क्या होना है, शून्य। सारी भौतिक इच्छाएं क्या है, शून्य होना। तो भौतिक इच्छाएं शून्य हो जाएगी तो शरीर का कैसे पालन करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान, ये भगवान के भक्त कुछ इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं, शरीर को भी, शरीर का भी पालन पोषण ऐसे करना है जिससे हमारी भक्ति के लिए वो अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि पालन पोषण करने में इतने व्यस्त हो गए, इतने एब्जॉर्ब हो गए कि भक्ति तो हमारी साइड में हो गई, क्योंकि शरीर यापन के लिए तो कुछ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। ना ही सिंह, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए शेर के मुंह में भी कोई जो हिरण है वो प्रवेश नहीं करता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी वो कैसे किया जाए वो भी भगवान के भक्त बताएं कि कैसे जीवन यापन करना, कैसे जीव को पार्जन करना। तो जीव को पार्जन की जो इच्छा है वो अन्य अभिलाषिता में नहीं आती, वो भी भगवान कृष्ण की सेवा के अंतर्गत आती है। वो कब आती है, जब वो इच्छा अल्टीमेटली चैनलाइज होती है भगवान की सेवा के लिए। अगर हमारा जॉब एक साइड है, भक्ति एक साइड है, तो हम अभी अन्य अभिलाषिता सुनम पालन नहीं कर रहे। शास्त्र में बताया गया है कि जो वर्णाश्रम के नियम है, वर्णाश्रम मतलब क्या है, जो हमारा जॉब है, जॉब मतलब जो हमारे भौतिक कर्तव्य हैं या जीव को उपार्जन के लिए जो विधि है वो भी भक्ति बन जाती है। तो 24 घंटे 7 दिन हम भक्ति में संलग्न हैं, चाहे हम जीव को उपार्जन कर रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से अनुकूलन कृष्णानुशीलन में लगे हुए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक डिवोशनल लाइफ होती है, अलग अलग लाइफ चलती रहती है सबकी। लेकिन भक्तों के लिए एक ही लाइफ होती है, केवल डिवोशनल लाइफ, ना वो कोई पर्सनल है ना प्रोफेशनल है, ना एक ही लाइफ है डिवोशनल लाइफ, चाहे वो बाहर है, घर में है, कहीं टूर पे जा रहा है, उसके लिए बस डिवोशनल लाइफ और कुछ नहीं। तब वो अन्याभिलाषिता शून्यम को पालन कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है। तो भौतिक इच्छाएं किस तरह की हो सकती है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक है भोग और दूसरा है त्याग। भोग और त्याग की इच्छा, भोग मतलब भौतिक सुख, इंद्रिय भोग, और त्याग मतलब भौतिक सुख का प्रयास किया, थक गए, मिला नहीं, तभी त्यागी बन गए, है ना। अंगूर खट्टे हैं, बहुत प्रयास कर लिया भौतिक जगत में लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली तो कुछ नहीं, साधु बन जाते हैं, अच्छा बिजनेस चलेगा, है ना। तो भोग और त्याग की इच्छाएं तो दोनों उसमें आती है, अन्य अभिलाषिता में आती है। भोग भी नहीं करना है, त्याग भी नहीं करना है, जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरह से अन्याभिलाषिता शून्यम पूरा होगा। फिर ज्ञान, कर्म आदि अनावृत, चार शब्द हैं, ज्ञान, कर्म आदि अनावृत, और हर शब्द का एक विशेष स्थान। तो ज्ञान से क्या है, आवृत किसे बोलते हैं, आवृत कवर्ड, ढका हुआ, और अनावृत मतलब उसको निकाल, हटा दिया, पर्दे को हटा दिया, अनकवर्ड। तो जो शुद्ध भक्ति में सेवा है वो ज्ञान और कर्म से अनावृत होती है। कहने का मतलब ज्ञान और जो कर्म है उसको ढक नहीं पाता है, ढक नहीं पाता है, कैसे उसको हम देखते हैं। तो कर्म से भक्ति कब कब ढकती है उसके बारे में रूप गोस्वामी बता रहे हैं। भक्ति क्यों कर रहे हैं, जिससे हमको भौतिक सुख प्राप्त, भोग, ऐसे पहले हमने चर्चा किया। जनरली भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम कष्ट मिट जाए, सुख मिल जाए, बीमारी चली जाए, उसके लिए से, उसकी वजह से हम भक्ति कर रहे हैं। और मान लीजिए उसकी वजह से भक्ति नहीं कर रहे हैं और भक्ति करते हुए हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया, जैसे भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर के टाइम में ऐसा हुआ कि जहाँ पर वो प्रचार करते थे वहाँ पर एक ऐसे गृहस्थ भक्त बोल सकते हैं, सो कॉल्ड भक्त, तो उनकी जो पुत्री थी वो चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनकी पुत्री का 8 साल में मृत्यु हो गया। तो उनके पिताजी ने कहा कि अगर चैतन्य महाप्रभु वास्तव में होते तो मेरी पुत्री का मृत्यु नहीं होता, वो मेरी पुत्री को बचा लेते, क्योंकि मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई है और चैतन्य महाप्रभु ने बचाया नहीं, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु जैसे कोई है नहीं, ये तो सब क्या है, काल्पनिक है, और वो नास्तिक बन गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग नास्तिक बन जाते हैं, या उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब मानते भी हैं नहीं मानते, मानते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। जैसे क्या हुआ, एक बार एक साधु आया गांव में और प्रवचन देने बैठे, सबसे पूछा आप भगवान में मानते हैं कि नहीं मानते, तो बोले कि हाँ मानते हैं। बोले सब मानते हैं तो मुझे प्रवचन देने की क्या ज़रूरत है, मैं चला जाता हूँ। तो अभी सब लोगों ने तय किया कि अभी फिर से हम सब मना कर देंगे, हम कोई नहीं जानते हैं तो प्रवचन देंगे। तो फिर वो सब बैठ गए, फिर साधु आए, बोले कौन कौन भगवान में मानता है, बोले कोई नहीं मानते, बोले नास्तिकों के बीच में कैसे प्रवचन दूंगा, फिर चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि आधे लोग बोलेंगे मानते हैं, आधे लोग बोलेंगे नहीं मानते हैं। फिर साधु आए तो साधु ने बोला कौन मानता है, बोले हम मानते हैं, कौन नहीं मानता है, नहीं मानते, तो जो मानते हैं वो नहीं मानने वालों को सिखा दें, मैं चला जाता हूँ। तो लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, ऐसी होती है, बहुत सुपरफिशियल। मंदिर में आएंगे, हाँ कृष्ण है, राम है, स्कूल में जाएंगे तो डार्विन या बिग बैंग या वैज्ञानिक, धार्मिक हैं, धार्मिक नास्तिक हैं, धार्मिक नास्तिक, धर्म को ही मान रहे हैं और फिर जो मॉडर्न साइंस है उसको ही मान रहे हैं। तो क्लियर नहीं हो रहा है कि वो भक्ति क्यों करना चाहते हैं, मतलब उनकी श्रद्धा क्या है, बहुत सुपरफिशियल, इसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, मानते भी हैं नहीं मानते। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं आजकल, अधिकतर लोग ऐसे हैं, वो नास्तिक नहीं बोलेंगे अपने आप। तो हमारी ज्ञान कर्म से आवृत है, कहने का मतलब क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, जिससे हमको कुछ भौतिक सुख प्राप्त हो, अगर भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे। कई लोग ऐसे, कुछ समस्या आई, पारिवारिक समस्या या आर्थिक समस्या, मंदिर आना बंद हो गया। अभी तो प्रभु जी ये समस्या चल रही है, जब मन शांत होगा तब भक्ति करेंगे, शांत मन से भक्ति होती है, कोई डिस्टर्बेंस से थोड़ी भक्ति होती है, जब शांत होते तब भगवान स्वीकार करेंगे, इसलिए थोड़ा शांत हो जाऊँ। तो भगवान ने भगवद्गीता कब सुनाई अर्जुन को, शांत मन में सुनाई अर्जुन के, अर्जुन तो बहुत डिस्टर्ब थे उस समय, बहुत चिंतित थे, युद्ध छोड़ना चाहते थे, उस समय भगवान ने भगवद्गीता का उपदेश दिया। तो भक्ति करने का उद्देश्य भौतिक सुख है तो वो गलत है, वो कर्म से आप ढक गई हमारी भक्ति। फिर दूसरी धारणा है कि पुण्य करेंगे, बहुत सारे पुण्य करेंगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, बहुत सारे तीर्थ स्थानों में जाएंगे, बहुत सारा चढ़ावा करेंगे, बहुत सारा दान देंगे और उससे हमको भक्ति, उसको भक्ति समझना, वो भक्ति नहीं है, वो क्या है, पुण्य है, या उसको बोल सकते हैं कर्मकांड। ऐसे देवी देवताओं की उपासना है, कहीं हम दान दे के आए, ऐसे हमने कहीं कुआं खुदवा दिया, या सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवा दिए, या प्याऊ लगवा दिए कहीं पर, ऐसे समाज सेवा के कुछ कार्य कर दिए, तो वो पुण्य है, वो भी शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति अलग ही है, भक्ति तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। तो पुण्य कार्य करके, अलग अलग पुण्य कार्य करके मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, मतलब वो कर्म से हमारी भक्ति आवृत है। कोई बहुत पापी है, बहुत पापी, वो ही भक्ति में आ सकता है, और उसका उदाहरण देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहाँ हिप्पी थे, तो उन्होंने तो कोई पुण्य नहीं किया था, कोई भी दान नहीं दिया, कोई भी तीर्थ स्थान का कोई यात्रा नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर प्रभुपाद का उपदेशों को पालन करके वो शुद्ध भक्त बन गए। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कृष्ण भक्ति जन्मे हुए मूल साधु संग। तो कृष्ण भक्ति का जो जन्म होता है वो किससे होता है, साधु संग से होता है, भक्तों के संग में आके ही भक्ति का जन्म होता है, पुण्य करने से, कर्मकांड करने से इससे भक्ति नहीं होती। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम कर्म से हमारी भक्ति क्या है, आवृत है। फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो। इतने बड़े भक्त हैं, सुपर डुपर भक्त, सब सेवा में आ गए हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों, सब हमें देखेंगे, सब आवा ही करेंगे, तो ये बहुत सूक्ष्म है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसको निकालना क्या है, बहुत बहुत मुश्किल है। और पूजा लाभ प्रतिष्ठा है मतलब कर्म से हमारी भक्ति क्या हो गई, आवृत हो गई, और जैसी आवृत हो गई उत्तम भक्ति से हम बाहर हो गए। तो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा होना, तो इसलिए तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, है ना, तृण से भी अधिक सुनिचेन, नीच से भी और नीचे सुनिचेन, तरोरपि सहिष्णुना पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, अमानिना मान देना, खुद के मान की इच्छा नहीं होना और दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तैयार रहना, कीर्तनिया सदा हरि, ऐसे जब चार हमारे अंदर गुण होंगे तब हम निरंतर कीर्तन कर पाएंगे। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा होना, और फिर वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, भक्ति किस लिए की जाती है, भक्ति करने के लिए, भक्ति का फल क्या है, भक्ति, भक्ति क्यों कर रहे हैं, और भक्ति कर सकें, और भक्ति क्यों कर रहे हैं, और भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्ति से कुछ हमको फल नहीं मिलेगा, भक्ति से भगवान और भगवान की सेवा मिलना वो ही अपने आप में सेवा का फल है। फिर ज्ञान, ज्ञान से भक्ति कैसे आवृत होती है, भक्ति कर रहे हैं भगवान में एकाकार होने के लिए, अगर भगवान को, भगवान का स्वरूप है उसके बारे में हमको डाउट है, तो हम सोच रहे हैं कि भगवान के स्वरूप में हम जाके लीन हो जाएंगे, तो क्या है वो ज्ञान से आवृत है। और मानसिक शांति के लिए ये भी होता है ना, देखो तो जहाँ शांति मिले वहाँ जाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं जहाँ शांति मिले वहाँ जाना चाहिए, तो शांति तो फिर बहुत जगह मिल सकती है, आप सैर सपाटा चले जाएंगे वहाँ भी शांति मिल जाएगी आपको, आप मनाली चले जाएंगे वहाँ भी शांति मिल जाएगी, मंदिर जाएंगे वहाँ भी, तो जहाँ शांति मिले वहाँ जाना चाहिए, ज़्यादा इतना विचार नहीं करना चाहिए। भक्ति करते समय अगर टेंशन हो रही, चिंता हो रही, तो उसको छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह जाओ, वहाँ शांति मिलेगी वहाँ रह लेना। तो मोटिव हमारा भगवान की सेवा करना नहीं है, मोटिव हमारा क्या है, खुद की शांति मिले, खुद को मन शांत होना चाहिए, इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। ये भी एक सूक्ष्म स्तर पर भौतिक भोग है जिसमें हम सोच रहे हैं हमारी शांति, मन शांत है या नहीं है, तब भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो फिर ज्ञान से अनावृत हो जाए। फिर आदि, ज्ञान कर्मादि, है ना, आदि मतलब कभी कभी योगिक सिद्धियां जाते हैं किसी में, जैसे हम पहले के समय देख सकते हैं कि वैदिक काल में कि कई भक्त हैं उनको भी योगिक सिद्धियां हैं, पानी पे चल सकते हैं वो, ना जमीन से ऊपर उठ सकते हैं, मन की बात पढ़ सकते हैं, तो ऐसी वो सिद्धियां आती हैं। लेकिन वो सिद्धियां आती हैं जिससे वो भगवान की सेवा में लगा सकें। हमें सिद्धियां क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि हम उसी में खो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आज प्रवचन हो रहा है और व्यास आसन पे बैठ के नहीं हो रहा है, मैं हवा में बैठ के दे रहा हूँ, और सबसे पहला प्रश्न आएगा प्रवचन के बाद कि प्रभु जी हम भी कैसे हवा में ऊपर आ सकते हैं, ये नहीं आएगा कि हम शुद्ध भक्ति पालन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाए। क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार, जो चमत्कार है वही उसी को भक्ति समझ लेते हैं। किसी ने थोड़ा सा सोना निकाल दिया वो भगवान बन गए, किसी ने थोड़ी बीमारी दूर कर दी वो भगवान बन गए। बीमारी दूर करने के डॉक्टर हैं, सोने की इतनी बड़ी बड़ी खाने हैं वो किसने बनाई है? तो थोड़ा सा किसी ने चमत्कार दिखा दिया तो हम सोच सकते हैं ये तो बहुत महान भक्त हैं, है ना, और फिर उस चमत्कार को हम भी अपनाना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया आदि, तो ज्ञान कर्मादि अनापता। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति में सेवा है उसकी परिभाषा पूरी होती है। तो पीछे फिर से एक बार दोहराएंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमः। पूरी शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और अगर हमारे अंदर कर्म, जैसे हमने चर्चा किया था कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, भोग प्राप्त करने के लिए, या कर्म कांड को भक्ति समझ रहे हैं, या पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। क्या बोलते हैं? कर्म मिश्रित भक्ति। और अगर मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं उसको बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो ये जो मिश्रण है वो भक्ति के मिश्रण से हमको निकलना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कई सैकड़ों श्लोक हैं और ये केवल एक श्लोक है अभी भक्ति रसामृत संग्रह का, जिसमें रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा और हम देखेंगे, समय कम है, ये भी चर्चा का विषय था कि जब हम उत्तम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ क्या आएगा। जैसे हमने बोला कि द कम्प्लीट साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति करेंगे एक साइंस है और उससे ये प्रभाव आएंगे। तो क्या क्या प्रभाव आते हैं? तो छह तरह के प्रभाव आते हैं। अभी प्रभाव हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर वो प्रभाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, अगर वो प्रभाव नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हो रही। तो केवल एक प्रभाव हम लेंगे, समय कम है, छह हम देख लेते हैं। पहला है, कोई पीछे से पढ़ेंगे, पीछे से जोर से। हाँ, क्लेश साधनी। पहला लक्षण क्या है? क्लेश साधनी, क्लेश अग्नि। तो जो क्लेश रूपी जो अग्नि है उसका समन हो जाता है, सारे भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मतलब ऐसा नहीं चले जाएंगे कष्ट, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। कष्ट जो आना है वो तो आएंगे, ऐसा नहीं भक्ति किया और कष्ट चले गए, कष्ट हमको अभी प्रभावित नहीं करेंगे। तो समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से राहत। फिर क्या है? सुविधा। सुविधा मतलब समस्त कल्याण का शुभारंभ। हम लिखते ना घर के बाहर शुभ लाभ, है ना, गणेश पूजन या लक्ष्मी पूजन में लिखते हैं शुभ लाभ, लेकिन भौतिक शुभ और भौतिक लाभ की कामना करते हैं। वास्तव में शुभ क्या है हम कभी देखेंगे, समस्त कल्याण का शुभारंभ। जो भक्ति करता है उसका सबसे, वो दूसरों के लिए तो सबसे बड़ा कल्याण करते ही है, और बाकी दूसरे लोग भी उससे आध्यात्मिक स्तर पर आकर्षित होते हैं। फिर सांद्रानंद विशेष आत्मा, कि भक्ति करने से हमको कंसंट्रेटेड हैप्पीनेस मिलती है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। फिर भक्ति क्या है? सुदुर्लभा। ये जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति में सेवा है, इसको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही विरल लोग ही इसको प्राप्त कर पाते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेशु कश्चित यदति सिद्धे इत्तमाम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्त्वतः। हजारों 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 में से कोई एक जानने का प्रयास करता है और उन हजारों हजारों में से एक कोई मुझे जान पाता, तो भक्ति क्या है, बहुत सुदुर्लभ है। और पांचवा है मोक्ष लघुता कृत। जो शुद्ध भक्ति में सेवा में लगा हुआ है उसको मोक्ष की इच्छा बहुत तुच्छ रह जाएगी, जन्म मृत्यु से निकलने की भी इच्छा बहुत तुच्छ रह जाएगी, है ना। मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतार भक्तिर आहित, तो ये बहुत ही उच्च स्तर है भक्ति का। और अंतिम है श्री कृष्ण आकर्षणी, कि ये श्री कृष्ण को भी भक्ति आकर्षित कर लेती और उसी की वो साक्षात रूप जो है भक्ति देवी है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेते हैं। भगवान का नाम है मदन मोहन, मदन मतलब कामदेव, कामदेव के द्वारा इस भौतिक जगत में सब एक दूसरे से आकर्षित हैं, लेकिन उस कामदेव को भी भगवान आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। और राधा रानी का नाम क्या है, मदन मोहन मोहनी, जो मदन मोहन है उनको भी वो आकर्षित कर लेते हैं। तो जो भक्ति है वो भी श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तो केवल हम जो एक लक्षण है वो हम देखेंगे, क्लेशाग्नि, किस तरह से हमारे सारे पाप वो भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो ये है पाप का घड़ा। लोग बोलते हैं पाप का घड़ा जब भर जाएगा, तो ये है पाप का चक्र, साइकिल ऑफ सिन, इसमें पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय में लिखा है। पाप का चक्र क्या है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, नीचे देख रहे हैं प्रारब्ध, प्रारब्ध लिखा हुआ है, वो प्रारब्ध आना चाहिए, अप्रारब्ध लगा है और उसके नीचे तीर है और नीचे प्रारब्ध आना चाहिए, वो थोड़ा गलती हो गया। तो एक साइकिल है अप्रारब्ध और इसमें भी मिस्टेक हो गया है, जो कूट है, कूट संस्कार लिखा है, वो आएगा जहाँ अविद्या, अविद्या लिखा हुआ है दिख रहा है पीछे, अविद्या जहाँ तीर लगा हुआ है वहाँ आएगा कूट, या जिसको बोलते हैं संस्कार, और जहाँ कूट और संस्कार लिखा हुआ है वहाँ आएगा बीज। तो ये है पाप का साइकिल, पाप का घड़ा। तो अप्रारब्ध, अप्रारब्ध से बनता है कूट, संस्कार, संस्कार से बनता है बीज, बीज से बनता है अप्रारब्ध, फिर अप्रारब्ध से फिर से बनता है कूट, कूट से बनता है बीज, बीज से बनता है अप्रारब्ध, और कभी कभी अप्रारब्ध जो होता है प्रारब्ध में फलित हो जाता है, ठीक है। और जो कूट है, जो संस्कार है, वो कहाँ से आते हैं, अविद्या से आते हैं, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में जानकारी बताना होना। तो प्रारब्ध क्या होते हैं, प्रारब्ध किसे कहते हैं, हम बोलते प्रारब्ध की वजह से हम भोग रहे हैं पूर्व जन्म का रिजल्ट ऑफ पास्ट, सारे रिजल्ट ऑफ पास्ट कर्मास हैं, लेकिन उसके स्पेसिफिक है प्रारब्ध, मतलब वर्तमान में जो हम दुख भोग रहे हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे किसी को बहुत सीवियर बीमारी है ना, या कोई इस तरह से परिवार में पैदा हुआ है जिसके भौतिक समृद्ध नहीं है, तो पूर्व जन्म के पाप की वजह से वर्तमान में जो उसको कष्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो उसकी परिभाषा है परिपक्व पाप जिसके कारण वर्तमान में कष्ट भोग रहे हैं। उदाहरण जैसे कोई बीमारी हो गई है, निम्न परिवार, मतलब निम्न मतलब जाति से निम्न नहीं, कर्म और स्वभाव से जो निम्न है, और अशिक्षित, अशिक्षित मतलब जिसको भगवत ज्ञान नहीं है, शिक्षा मतलब ये नहीं कि काका गागा ए बी सी डी आती है, जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है वो है अशिक्षित। तो वो प्रारब्ध मतलब जो मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, ऐसे पाप जिनकी वजह से अभी हम कष्ट भोग रहे हैं। फिर आते हैं अप्रारब्ध, ऐसे जो बस अभी निकलने वाले हैं, जैसे आपने कुछ बाहर कुछ खाया और आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, कॉलरा हो गया, तो अभी तुरंत सिम्टम नहीं आएगा, उसका 2-3 दिन के बाद आएगा। या आपने कुछ किसी को मार दिया और आप दूसरे शहर में जाके एक नागरिक बन गए, तो आपको सज़ा मिलेगी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद सज़ा मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, वो पाप आना बस तैयार है और थोड़े समय के बाद जो अप्रारब्ध है वो प्रारब्ध में चेंज हो जाए। फिर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अगर ये आज ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिर बीज, बीज का अर्थ क्या है, पाप करने की इच्छा। जैसे कई लोग पाप करते हैं तो प्रायश्चित करते हैं, किसी ने पाप किया, चलो हरिद्वार जाके गंगा नदी में स्नान कराएंगे, पाप धुल जाएंगे, या कुछ बिजनेस में कुछ ऐसे डीलिंग किया, बहुत लोगों की जेब काटी, तो थोड़ा सा दान दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन पाप करने की इच्छा रह जाएगी। अगर पाप खत्म भी हो गया लेकिन पाप करने की इच्छा रहेगी, उसकी वजह से वो दोबारा पाप करेगा, जिसको बोलते हैं हस्ती स्नान, हाथी का स्नान। हस्ती स्नान क्या होता है, हाथी स्नान करता है, बाहर आता है, अपने सूंड में धूल लेता है और फिर अपनी तरफ शरीर के ऊपर डाल देता है। तो जो भक्ति में नहीं है और जो प्रायश्चित कर रहे हैं, उनका प्रायश्चित कैसा है, हस्ती स्नान की तरह। उन्होंने कुछ प्रायश्चित किया, कुछ दान दे दिया, तीर्थ स्नान में नहा के आ गए, तो पाप तो खत्म हो गया, क्योंकि वो भी शास्त्रों के अनुसार है। शास्त्रों में भी दिया है कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, एकादशी व्रत को पालन करने से पाप खत्म हो जाते हैं, गाय का दान देने से पाप खत्म, शास्त्रों के अनुसार। लेकिन उधर ही नहीं रुकना है, क्योंकि पाप करने की जो इच्छा है, अविद्या है, वो तो गई नहीं और उसकी वजह से हम दोबारा पाप करेंगे। तो भक्ति क्या होती है, पूरी तरह से पाप करने की इच्छा को भी हटा देती है, प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है, अप्रारब्ध भी खत्म हो जाता है, भक्ति से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक जंगल में अगर तेज आग लगती है, तो आग में अगर उस जंगल में बहुत सारे सांप हैं, तो आग लगने से क्या होता है, वो सांप भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो भक्ति का प्रमुख लक्षण ये नहीं है कि हमारे पाप खत्म, हमको अपने पाप खत्म करना है, भक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम जाना। ये क्या है, एक आनुषंगिक लक्षण है, साइड इफेक्ट है, जिससे हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। तो भक्ति करने से पाप करने की इच्छा चली जाती है। जैसे आजकल बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, नशा मुक्त अभियान, और तंबाकू नहीं खाएंगे उसके लिए अभियान चल गया, ऐसे बहुत सारे जो बैड हैबिट्स हैं उसको निकालने के लिए सरकार कितना खर्च करती है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ, CSR, तो उसमें भी सब एथिक्स का पालन करें, मोरलिटी का पालन करें। तो वो एथिक्स कब तक काम आते हैं, जब तक सामने वाला हमारे भोग में इंटरफियर नहीं कर रहा, और जैसे हमारे सामने वाले ने हमारे भोग में इंटरफियर किया, वो एथिक्स साइड में हो जाते हैं। अभी अलग अलग तरीके हैं, जैसे अभी भोपाल में भी जो चौराहे हैं उसमें CCTV कैमरा लग रहे हैं कि कोई अगर ट्रैफिक नियम तोड़ के जाएगा तो उसको वहीं पकड़ लिया जाएगा। तो उन्होंने वो सब तो प्रबंध कर दिया, लेकिन अंदर जो लोगों के अंदर जो इच्छा है पाप करने की या इस तरह से सरकार के नियमों को तोड़ने की, वो इच्छा तो अभी भी बनी हुई। तो हम कितने भी बाहर से बहुत सारे नियम लगा दें, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, तो उसके बाद वो छुपके करेंगे, लेकिन अगर भक्ति करेंगे तो पाप करने की इच्छा क्या होगी, वो ही चली जाएगी। तो इसलिए भक्ति में क्या है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, है ना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना, तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे इसलिए प्रभुपाद से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है कुछ हिप्पी लोग भक्त बन गए, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इतने सारे डॉलर्स खर्च करके इनकी जो गलत आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उसको छुड़ा नहीं पाए, और मैंने हरे कृष्ण महामंत्र करवाया और वो नाचे और उनके सारे जितने भी बैड हैबिट्स हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि वो पाप करने की इच्छा ही चली गई। तो भक्ति क्या होती है, जैसे भी एक चना है, चने को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर अंकुरित नहीं होगा। तो इसी तरह जब भक्ति में लगते हैं तो जो पाप करने की इच्छा होती है वो भी खत्म हो जाती है समूल। तो व्यक्ति पाप करेगा ही नहीं, और पाप नहीं करेगा तो ये जो पाप का साइकिल है वो नहीं बनेगा, तो समूल रूप से नष्ट हो जाएगी। और दूसरे जो प्रायश्चित हैं उसमें समूल रूप से नष्ट नहीं होता, क्योंकि पाप करने की इच्छा बनी रहती है। फिर एक कूट आता है, और फिर पद्म पुराण में श्लोक है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। जो कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति में लगा है उसके अप्रारब्ध और फल अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीज और प्रारब्ध इस क्रम में सारे नष्ट हो जाते हैं। पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है, कूट होता है, बीज होता है, फिर प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भक्ति का एक लक्षण है। फिर दूसरा है, अभी टाइम नहीं है, कभी और चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि शुद्ध भक्ति में सेवा है वो क्या है, मिश्रण क्या है, भक्ति में स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, और जब हम भक्ति करते हैं तो क्या उसके छह लक्षण आते हैं, और उसमें से एक लक्षण है क्लेशाग्नि। तो ये विस्तार से ये जो पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान, इसको आप जिनके पास नहीं है वो ले जाएं, इसको ध्यान से पढ़ें। सब कुछ जो भी आज हमने चर्चा किया वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। हरे कृष्ण। किसे कोई प्रश्न है, कुछ जिनके आशा है कुछ? तो प्रश्न ये है कि प्रवचन में चर्चा हुआ कि कृष्ण राधा कृष्ण की साथ में सेवा करना है, अकेले नहीं करना है। तो कुछ संप्रदाय है जहाँ पर अकेले भगवान की सेवा की जाती है। तो अगर उस संप्रदाय की डिटेल में जाएंगे तो वहाँ ऐसे बहुत सारे भजन हैं जहाँ क्लियर कट आ रहा है कि भगवान और जो श्रीमती राधा रानी है उनकी साथ में भक्ति हो रही है। तो उस केस में क्या होता है कि मतलब ये बहुत इंटीमेट है कि जो भगवान के हृदय में वो श्रीमती राधा रानी के साथ में पूजा करते हैं, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो तो राधा रानी को हटा ही देते हैं, वो केवल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उनके जो भजन है, उनकी जो पूजा पद्धति है, उसमें वो सब आ जाता है, वो डायरेक्ट उसमें नहीं करते क्योंकि उनका मूड अलग है इस तरह से। बस क्या इसका अर्थ क्या है,
कुछ बताइए, मैं जानना चाहता
हूं। हाँ, इस चौपाई का अर्थ क्या है? नहीं, मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है। रामचरितमानस नहीं पढ़ी है मैंने। इसका अर्थ क्या है तो फिर उसको समझाएंगे।
जैसे कहते हैं कि भगवान को जैसे मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूं, जैसे कि 24 घंटे हैं, मैंने 8 घंटे सोने में बिता दिए, 8 घंटे मैंने काम करा, ठीक है, बचे मेरे पास 8 घंटे, 8 घंटे में फिर 2-3 घंटे काम कर लिया, बचे कुछ घंटे। उनका कहना यह है कि अगर पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए मतलब भगवान को
तो प्रश्न ये है कि तुलसीदास जी ने एक जगह बोला है रामचरितमानस में कि अगर हम पूरे 8 घंटे इसमें दे रहे हैं, 8 घंटे इधर दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकला है तो थोड़ा भी टाइम देंगे तो अच्छा है ना। तो शास्त्रों में कई जगह ऐसा आता है जहाँ भक्ति की महिमा का गुणगान किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि साधु संघ, जैसे एक श्लोक है, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो। कि अगर लव मात्र मतलब 1/8 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड, अगर इतना भी हम साधु संघ करेंगे तो सारी सिद्धि हो जाएगी। तो अभी जो सिंसियर होगा वो सोचेगा कि इतना संघ करने से सिद्धि प्राप्त हो रही है तो मुझे तो हमेशा संघ करना चाहिए, और जो शॉर्टकट निकालना चाहेगा वो सोचेगा इतने ही कर लेते हैं बाकी अपना काम करेंगे। उसकी महिमा का गुणगान हुआ है। थोड़ी देर मैं साधु संग करूंगा और बाकी अपना भोग करूंगा, बाकी मेरी अपनी लाइफ है।
जैसे कि रामायण,
एक मिनट पहले एक मिनट प्रश्न का उत्तर होंगे। तो जहाँ जहाँ बताया जाता है कि एक क्षण भी, जैसे एक उदाहरण आता है कि कार्तिक के महीने में अगर दामोदर जी की हमने एक बार भी आरती कर ली तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो एक कहीं किसी पुराण में एक कथा आती है कि एक चूहा था और चूहा जो है ऐसे घूम रहा था भगवान के ऑल्टर के पास में, तो वहाँ दिया था, तो उससे क्या हुआ, चूहे के जो बाल हैं वो जल गए और चूहा क्या ऊपर नीचे ऐसे होने लगा, ऊपर नीचे ऐसे सो रहा था। तो ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब आरती हो रही थी भगवान की और उससे क्या हो गया, वो चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अनायास अगर ना जाने बिना भी हम भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं तो उससे इतना फायदा होने वाला है। तो अगर हम समझ के शास्त्रों के अंतर्गत, गुरु के अंतर्गत सेवा करेंगे तो उससे क्या मिलेगा। तो ये भक्ति का गुणगान करने के लिए होता है, एक होता है जनरल प्रोसेस और एक होता है गुणगान। गुणगान गलत नहीं है, वो भी होता है, लेकिन हमारे मन में होगा कि हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमको पता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, तो हम क्या हो जाएगा, वो चीटिंग मेंटेलिटी हो जाएगी, हम धोखा दे रहे हैं। अच्छा हमको समझ में आ गया कि थोड़ा तो टाइम देना चाहिए, तुलसीदास जी बोले थोड़ा टाइम देना चाहिए उसमें आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि पूरा दें। तो शास्त्रों को पूरा सम्यक दृष्टि से देखना है, एक भाग नहीं लेना है। जहाँ भागवत में लिखा है आहे तो कि अप्रतिहता, बिना रुके भक्ति करना है, निरंतर करना है, तो दोनों में कैसे सामंजस्य बैठेगा वो हमको सोचना है। ये नहीं कि ये अच्छा लग रहा है तो मैंने वो स्वीकार कर लिया और ये अच्छा नहीं लग रहा है तो स्वीकार नहीं करूँगा। ये पहले स्पष्ट हुआ, अभी आगे नहीं, तो क्या उससे क्या निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। तो अभी वो उसके बारे में चर्चा हुई नहीं, रामचरित मानस रामायण के बारे में अभी उसके बारे में कुछ प्रवचन में चर्चा हुआ क्या, नहीं उसके बारे में चर्चा हुआ क्या नहीं हुआ। प्रश्न वो पूछिए जो प्रवचन से संबंधित है, प्रश्न तो बहुत सारे हजार हो सकते हैं।
जैसे आपने बोला बताया कि जो मम्मी पापा के जो सेवा करते हैं हाँ। वो भी एक जैसे भक्ति नहीं हाँ। तो गुरु जी जैसे सरवण कुमार का उन्होंने भी तो अपने मम्मी पापा का पूरा जीवन अपना मतलब वो कर दिया, माने में भक्ति भी उनको जितने भी तीर्थ यात्रा है उन्होंने पूरा करवाया। तो उसमें
प्रश्न क्या है, तो प्रश्न पूछे, प्रश्न क्या है, सीधे पूछे ना, क्या बताएं। हाँ तो माता पिता की सेवा करना भक्ति है कि नहीं। तो अभी हमने भक्ति में सेवा देखा, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम इतिर भक्ति उत्तमा। तो जो कृष्ण है और कृष्ण से संबंधित लोग हैं उनकी सेवा करना वो भक्ति है, ठीक है। तो अभी माता पिता की सेवा कैसे की जाएगी, तो माता पिता की सेवा ऐसे है कि उनको भी हम कृष्ण भक्ति में लेके आए, वो वास्तव में माता पिता की सेवा है। एक मिनट, तो जो पुत्र है माता पिता के लिए एक आश्रय प्रदान कर सकता है, खाने का प्रबंध कर सकता है, कपड़ों का प्रबंध कर सकता है, तीर्थ स्थान भी घुमा सकता है, वो है, वो कोई प्राइमरी नहीं है, वो पशु योनि में भी है, वो सब योनि में है, पारिवारिक संबंध है ना। लेकिन जब पुत्र है माता पिता को भी कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास करता है सही तरीके से, तब वो माता पिता की वास्तव में सेवा होगी। तो किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं कृष्ण भक्ति कर रहे हैं अरे माता पिता से संबंध नहीं है, भाई से संबंध नहीं, किसी से संबंध नहीं, सबको कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास करना है। अभी वो कितना स्वीकार करेंगे उनके ऊपर, उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, हमने प्रयास किया उन्होंने ग्रहण किया नहीं किया उनके ऊपर, तो वास्तव में माता पिता की सेवा होगी। और जो श्रवण कुमार ने किया वो शास्त्रों में दिया है, वो एक पुण्य है, माता पिता की सेवा करना एक पुण्य है, वो भी शास्त्रों में दिया है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति कब बनती है? जब माता पिता को, हमारे माता पिता और सभी वंश के जो वास्तविक माता पिता हैं उनसे मिलाते हैं, तब वो भक्ति बनती है। अरे सुनाओ कोई। तो कृपया करके जिनके पास नहीं है ये पुस्तक, वो भक्ति रसामृत सिंधु आज ले जाएं, उसको पढ़ें। इसमें बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताया है। माता जी पीछे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।